देवियों सज्जनों आप सबको नमस्ते। ईशावास्योपनिषद, शॉर्ट में जिसको ईशोपनिषद कहते हैं, यजुर्वेद का 40th चैप्टर या लास्ट चैप्टर के रूप में भी जाना जाता है, उसी की चर्चा हम कर रहे हैं। पहले मंत्र हमने पिछले बार सुना, ईशावास्यमिदं सर्वम, द होल यूनिवर्स इज परमिटेड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, ओन्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। और आज उसी की कंटिन्यूटी में अगला मंत्र है, मेरे साथ रिपीट करिएगा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ईशोपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है, सिर्फ 18 मंत्र है, पर आप कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो वैदिक कल्चर है या हमारे सनातन धर्म के जितने भी अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो एक एक मंत्र उस पूरे प्रिंसिपल का बीज रूप है, सीड स्वरूप है। पहले मंत्र में ईश्वर के बारे में बताया, हमारा इस संसार का ईश्वर के साथ क्या संबंध है। दूसरा मंत्र है कि हम इस संसार में कैसे जिए, जो बाद में जाकर के कर्म सिद्धांत, जो लॉ ऑफ कर्म और लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस की डेवलपमेंट हुआ। तो मंत्र का सिंपल मीनिंग है कि लोगों को चाहिए कि वो कम से कम 100 साल तक जीने की इच्छा करे। मीन्स एवरीवन शुड डिजायर टू लिव फॉर ए मिनिमम 100 ईयर्स। पर कैसे, कंडीशन है, एंड ये बड़ा नेचुरल है, कुर्वन नेवही, जब वो एक्टिव हो रहे, जब वो एक्टिव होकर के ही 100 साल जीने की इच्छा कर सकता है। अगर आपकी लाइफ इनएक्टिव है, कुछ ज्यादा कुछ करते धरते नहीं है फिजिकली, तो फिर आप कितना भी बादाम खाएं, कितना दूध पिएं, कितनी मलाई खाएं, उल्टा ये नुकसान करेगा। ये पहला भाव है। दूसरा, एवं त्वयि नान्यथा इतोस्ति, और बात यह कि यही एकमात्र शर्त है, कंडीशन है। प्रॉब्लम है कि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तुम कहोगे चलो मैं 100 साल तक जीऊंगा, पर तुम्हारे कंडीशन मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं और कहीं से कोई दूसरा कंडीशन लूंगा जो थोड़ा चीपर हो, आसान हो, काउच पर बैठ के टीवी देख के खाना खा के ऑफिस में काम करके ही 100 साल जी जाऊं। कोई मुझे, बहुत सारे बाबा लोग, बहुत सारे मिरेकल करने वाले लोग मिलते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ले लूंगा। पर प्रॉब्लम है कि वो आपको वो सब बेच सकते हैं जो आप देख नहीं सकते, मरने के बाद मोक्ष जल्दी दिला देंगे, कुछ ना करके स्वर्ग पहुंचा देंगे, पर आपको हेल्दी और लॉन्ग लाइफ वो नहीं गारंटी दे सकते ना, क्योंकि तो आपको उसी जीवन में भोगना है। इसलिए तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई तुम्हें चीट भी नहीं कर सकता। तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर लंबा जीना चाहते हो तो कुर्वन एव इह, यहीं पर काम करते हुए, बाय डूइंग वर्क्स इनडीड वन शुड विश टू लिव हियर फॉर 100 ईयर्स। पर आप कहोगे ठीक है, हम काम करेंगे, जनरल ह्यूमन बींग का जो नेचर है, हम सत्संग में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, टेक्स्ट वगैरह पढ़ते हैं, उसमें एक बात बार बार आता है कि डिटैच्ड होकर के करो, निष्काम भाव से करो। और हमारा भी आम लोगों का यही सवाल है, ये तो नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, जॉब कैसे करेंगे, प्रमोशन कैसे मिलेगा, एम्बिशंस कैसे फुलफिल होगा, ये तो सब उसके मैच नहीं करता। ये तो नहीं हो सकता। तो मंत्र कहता है नहीं, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये कर्मों का प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी कर्म कभी भी तुम्हारे साथ नहीं चिपकता। वो तो बेचारा कोई आदमी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, कोई जोंक नहीं है, कोई कीड़ा नहीं है जो तुमसे चिपक जाएगा। तुम ही चिपकते हो। अवेयरनेस बनाए रखो तो तुम काम करते हुए भी दूर रहोगे। कर्म अपने आप तुमसे नहीं चिपकता। तो तीन चीजों को हमें तीन समझने की जरूरत होगा इस मंत्र में। पहला भाग समझना है कि द नीड ऑफ एक्शन, कर्मों की जरूरत है, काम करना जरूरी है। क्यों? लाइफ में सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, एंटरटेन के लिए नहीं, लंबा जीने के लिए और हेल्दी होने के लिए। नंबर टू, जब कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा। तो कर्म और फल के बीच का जो रिलेशनशिप है, जिसे हम लॉ ऑफ कर्म लूज ट्रांसलेशन में कहते हैं, और अगर आप थोड़ा ज्यादा ठीक ठाक कहना चाहें तो लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। फिर तीसरा जो चीज हम जानेंगे इसमें, फिर इससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है कि हम कर्म भी करें, क्योंकि लंबा जीना है तो काम करना पड़ेगा। अब काम करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो मिलता रहेगा, और काम और रिजल्ट के बीच में पीस कर हम जन्म और मृत्यु के व्हील के अंदर पीसते जाएंगे। इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय? तो कर्म योग। इससे छुटकारा पाने का जो उपाय है कि काम भी करें, लंबा भी जिए इस जीवन में, हेल्दी भी जिए इस जीवन में, खुश भी जिए इसी जीवन में, मरने के बाद भी मोक्ष मिले, दोनों काम हो जाए, तो उसका नाम, उस फॉर्मूला का नाम है कर्म योग। छोटा सा मंत्र है, पर ये तीनों कर्म के जो तीन अलग अलग डायमेंशन है, कर्म करना जरूरी है, और अगर काम करते हैं तो हमें ठीक रिजल्ट क्यों नहीं मिलता, मिलता है तो कितना मिलता है। नंबर टू, कर्म और हमारे लाइफ के साथ क्या कनेक्शन है, फ्यूचर में, पास्ट में। और तीसरा, इस कर्म के चक्र से छुटकारा पाने का क्या उपाय है, कर्म योग। आज हम सिर्फ पहला भाग को लेंगे, कर्म करना और लाइफ के साथ उसका क्या लेन देन है। हमारे संस्कृत के नीति शास्त्र में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविशति मृगः। आप कितने भी समर्थ हो, कैपेबल हो, अगर आप पढ़े पढ़े हैं, कुछ करते धरते नहीं है, आपके अंदर ईश्वर ने कितनी भी टैलेंट दी हुई हो, आपके अंदर कितने भी एबिलिटी हो, एनर्जी हो, ट्रेनिंग कितना भी परफेक्ट हो, अगर आप कुछ करते धरते नहीं है तो खाने को भी चार रोटी जुगाड़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। शेर कितना भी ताकतवर हो, बड़ा सुंदर एनालॉजी है, अगर सोया रहे तो हिरण अपने आप उसके मुंह तो नहीं घुसने वाला है, शिकार करना पड़ेगा उसको भी। राजा है, पावरफुल है, एनर्जी है, स्पीड है, सब कुछ है, पर अगर बैठा रहे कोई हिरण या खरगोश उसके मुंह में अपने आप नहीं घुसेगा, उसको तो काम करना पड़ता है। इसीलिए तुम कहोगे कि मैं राजा हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं वो हूं, मुझे करना नहीं है, तो ऐसे ही होगा। जैसे आपको पता है, आजकल जो 100 साल 150 साल पहले से रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, भारत में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, हजारों में, लाखों में, एक एक स्टेट में, जिसको अब राजस्थान एक स्टेट है उसी में ही आपको 20 25 40 राजा मिला करेंगे। अब उनके राजाओं के खानदान के होने के बावजूद भी बहुत सारे न्यूज आपको मिलेगा, कोई चाय बेच रहा है लखनऊ के किसी सड़क पर, चाय बेच रहा है, पता चला किसी नवाब का, नवाब खानदान से बिलोंग करता है, भाई हमारे देश में रिक्शा चलाने वाले के बच्चे आईएएस बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, पॉलिटिशियन बन जाते हैं, और एक नवाब का घर का आदमी चाय बेचता है। क्यों भाई? अगर आपने कुछ किया नहीं है, मेहनत नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, कुछ नहीं किया, तो आखिर में पेट पालने के लिए क्या करेंगे बुढ़ापा में? और तो कोई रास्ता नहीं है, जो था आपने उसको उड़ाया, महल था बेच के खाया, जो भी सरकार ने आपको दिया था उसको खा पी लिया, अब कुछ है ही नहीं, कुछ किया नहीं है। करना जरूरी है। मजेदार बात है कि हम उस कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, अल्दो हमारे ज्यादातर चीजें बड़ा अपोजिट होता है, हम जिस कल्चर से हैं वो हमारे टेक्स्ट या स्क्रिप्चर जो हमें ज्ञान देते हैं, ये खास करके मैं इंडियन कम्युनिटी की बात करता हूं, और हमारा जो प्रैक्टिस है, ये दोनों में बड़ा अंतर दिखता है। हमारे जितने भी ऋषि मुनियों ने या शास्त्रों ने जो सिस्टम बनाया था, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसका अर्थ क्या है? वर्ण का मतलब होता है वर्ण करना, टू चूज, व्रिंग वर्णी, उससे वर्ण बना, जिसको हम खुद चूज करते हैं। क्या? जैसे गीता में आप पढ़ते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म स्वभावश, जिस तरह की व्यक्ति के एटीट्यूड है, नेचर है, एबिलिटी है, और जिस तरह का उसका कर्म है, प्रोफेशन है, या जो भी डे टू डे लाइफ की कंडक्ट से बिहेवियर है, उसके बेस पर वो उतना वर्ण चुनता है। आज आप प्रोफेसर हैं, एडवाइजर हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, कल आप तलवार वो बंदूक पकड़ेंगे, पुलिस बनेंगे, सोल्जर बनेंगे, तो आप क्षत्रिय बनेंगे, अलग अलग है। तो कर्मों से वर्ण का विभाजन हुआ। आश्रम वो वर्ण व्यवस्था में भी वही कर्म ही बेसिक कंडीशन है, आश्रम में भी वही है। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको आप स्टूडेंट लाइफ कहते हैं, गृहस्थ आश्रम जो हाउस होल्डर लाइफ, मैरिड लाइफ है, वानप्रस्थ आश्रम रिटायर्ड लाइफ, वो आजकल की तरह रिटायर्ड नहीं है, मतलब पहले रिटायर्ड लाइफ ये था कि आप फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए, आपके बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा कर लिया, उनके भी बच्चे हो गए, अब आप फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री है, अब आप अपना पूरा फोकस काम जो भी कुछ आप करते हैं कंटिन्यू करेंगे, पर फैमिली के लिए नहीं, सोसाइटी के लिए करेंगे, देश के लिए करेंगे, समाज के लिए, और थोड़ा अपनी संन्यास के लिए तैयारी के लिए आप बेसिक्स तैयार करेंगे। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, जो कुछ करते हैं कर्मों को छोड़ना नहीं, कर्मों के पीछे जो आपके माइंडसेट है उसको आप रिनाउंस करेंगे, जो डुअरशिप है, जो अटैचमेंट है, जो ईगो है, रिनाउंस करने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको ईश्वर की प्राप्ति के लिए रास्ता मिले। पर देवियों सज्जनों, बड़े मजेदार बात है, इन चारों सिस्टम का नाम जो हमने दिया, हमारे ऋषियों ने दिया, वो दिया आश्रम। श्रम समझते हैं? काम करना। आ मतलब कंटिन्यूअसली, हमेशा चारों तरफ से काम। वो सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ हो या वानप्रस्थी हो, एक चीज जो चारों में कॉमन है कि चारों को 24 घंटे काम करने का है। मतलब 24 घंटा मतलब सोना भी एक काम है, मतलब ये नहीं कि आप सोने को ही काम समझ के 23 घंटे ना सो जाइए, मतलब एक घंटा खाना पीने के लिए आप छोड़ देंगे, पर सोना भी एक काम है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में इसको कहते हैं क्रिया, सोना भी एक क्रिया ही होता है, वर्ब होता है। क्यों? सोना उनके लिए क्रिया है, जो बहुत काम करते हैं उनको रेस्ट चाहिए, विश्राम चाहिए, रिफ्रेश होने के लिए। तो ये जो रिफ्रेश का प्रोसेस है, ईश्वर ने उसके लिए नींद की व्यवस्था की है। आप नहीं सोए एक हफ्ते तक, 15 दिन तक, आप देखते हैं फिजिकली मेंटली आप कैसे एग्जॉस्टेड हो जाते हैं। तो आश्रम, बस आपकी एटीट्यूड अलग होगा, काम आपके अलग अलग तरीके के होंगे, पर आपको करना पड़ेगा, वर्ण हो, आश्रम हो। और इसी तरह देखिए, हमारे यहां कर्मों को कितना ज्यादा सेंटर में रखा जाता था और बोला कि हमारे जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसकी जो नेचुरल एस्पिरेशन है, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, वो अफ्रीका का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, ट्राइबल हो, सिविलाइज्ड हो, कैसा भी हो, एक ह्यूमन नेचर जो होता है, एस्पिरेशन होता है, उसको क्लासिफाई किया कि चार तरह के होते हैं। और पता है उसका नाम भी हमने क्या दिया, पुरुषार्थ चतुष्टयम। पुरुषार्थ वही मेहनत करने से जो फल मिलता है, धर्म मेहनत से ही धर्म की प्राप्ति होगी, अर्थ पैसा वो भी मेहनत से होगी, काम इच्छाओं की पूर्ति वो भी मेहनत से होगी, मोक्ष वो जो लिबरेशन है इस चक्र से छुटकारा, उसके लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। ये जरूरी है कि हम कुछ भी करें, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट होता था। मैं क्यों ये चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करके बता रहा हूं कि इंडियन सोसाइटी में ये था, क्योंकि ये वही इंडियन सोसाइटी है आज भी जहां काम को बड़े बुरे नजर से देखा जाता है। वो भारत में ट्रक जाते हैं ना, उनके पीछे लिखा होता है बुरी नजर वाले। प्रॉब्लम है कि इंडियन सोसाइटी में हो सकता है और भी जितने अंडर डेवलप्ड, अनडेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में भी यही नेचर हो, मुझे पता नहीं, पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ऐसा नहीं कि इंडिया में, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, वो जो पूरा का पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसमें काम करने वालों को बड़े बुरे नजर से देखा जाता है। आप अगर अपना बैग उठा के जा रहे हैं, लोगों को लगता है कोई गरीब होगा। कल तक मैं बेकार था, 5-7 हजार रुपए कमाता था, तो अपना बड़ा बड़ा बोझा भी खुद उठा के जाता था। नौकरी की कोशिश की, मिल गया 10-20 हजार, 40 हजार की तनख्वाह मिल गई रुपए, हल्का सा अटैची भी मुझे कुली करके उठाना पड़ता है। इसीलिए नहीं कि मैं उठा नहीं सकता, इसीलिए कि काम करना छोटे लोगों का लक्षण होता है। आप वंस बड़े हो गए, ये सब काम करना अच्छा नहीं है। अभी भी आप अमेरिका आ गए, बहुत कुछ अच्छी चीजें सीख लिया, अभी भारत जाते होंगे, अगर खाना खाने के बाद आप अपने बर्तन धो रहे होंगे तो 10 रिलेटिव आपको बोलते होंगे, क्या कर रहे हो जी, है ना भाई, है कर लेगी, आप क्या कर रहे हो, नहीं नहीं, अरे क्या बात करते, इतने बड़े, अगर आपने कर लिया, पता है पूरे एरिया में बड़े फेमस हो जाते हैं, देखो कितना बड़ा आदमी है, डॉक्टर है, अमेरिका में ऐसा है वो है, देखो अपना बर्तन मांजता है, मानो कितनी बड़ा एहसान कर रहा है धरती पर। भारत में लोग नौकर इसीलिए नहीं रखते हैं कि उनको काम करने के लिए टाइम नहीं है, इसीलिए रखते हैं कि स्टेटस सिंबल है, छोटे लोग काम करते हैं, बड़े नहीं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया में 10-15-17 साल पहले हमने एक न्यूज पढ़ी थी, एक एडिटोरियल था उसके साथ, कोलकाता में जिसने लिखा था वो एडिटोरियल पेज में, वो राइटर खुद, उसका कोई फ्रेंड कलकत्ता में रहता है, किसी फैक्ट्री में अच्छे बड़े पोस्ट में है, इंजीनियर है, तो वो कलकत्ता घूमने गया था, तो उसके फ्रेंड ने कहा कि हमारे फैक्ट्री में आओ, आपको फैक्ट्री घुमाते हैं, तो फैक्ट्री गए थे घूमने के लिए। जिस दिन गए थे तो घूम के देख रहे थे, देखा एक जगह एक बड़ी सी मशीन पड़ी हुई है, 2-4 बुरे लोग काम कर रहे हैं, और इनके फ्रेंड जो खुद इंजीनियर है, और उनके बाकी साथी और दूसरे छोटे बड़े जो भी वहां काम करने वाले सब खड़े हैं। तो उन्होंने बताया कि ये हमारा एक मशीन है, काफी दिनों से खराब हो गया था, करीब 3-4 महीने से, तो हम काफी कोशिश कर रहे थे ठीक करने की, ठीक नहीं हुआ, तो हमें लंदन से एक्सपर्ट्स बुलाना पड़ा, तो ये तीन चार एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं, ये आए हैं उसको फिक्स करने के लिए और काम कर रहे हैं। तो खड़े होकर देख रहे थे, वो बेचारे जो ब्रिटिश इंजीनियर्स थे जो ठीक कर रहे थे, वो नीचे गिर के ऊपर करके उनके हाथ काला मुंह काला करके काम कर रहे मशीन को उठाना था। काफी लोग वहां खड़े हुए थे, भारी था, तो उन्होंने हेल्प मांगा, कोई हेल्प करो। हमारे इंडियन इंजीनियर्स खड़े थे इंक्लूडिंग राइटर के फ्रेंड, वो इधर उधर झुकने लगे, देखे वो छोटे मोटे कर्मचारी कौन है, भाई हाथ लगाओ। उन्होंने हाथ लगाया और उठाया, बात इतनी सी थी और कोई बात नहीं। उसको देखने के बाद जो उनको फील हुआ उन्होंने उसको लिखा कि ये जो हमारे अपने जो फ्रेंड इंक्लूडिंग उनके जो भी साथी थे इंजीनियर्स थे वो उस काम को फिक्स नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनसे ज्यादा एक्सपर्ट ज्यादा पैसा कमाने वाले ज्यादा नॉलेज रखने वाले लोगों को बाहर से बुलाया, और वो बाहर से आने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं इनसे ज्यादा कमाते हैं ज्यादा बड़े पोस्ट पर हैं ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो खुद फिजिकली एक्टिव होकर काम करते थे, और हमारे इंजीनियर जो उनसे इन्फीरियर है नॉलेज वाइज भी पैसे वाइज भी पोस्ट वाइज भी, वो बाबुओं की तरह खड़े होकर देख रहे थे। हाथ काला नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां छोटे छोटे कर्मचारी हैं, क्या सोचेंगे, तो छोटे कर्मचारियों को लगाया। ये जो एटीट्यूड है यही गरीबी की भी बड़ी कारण होता है, जो ओवरऑल कलेक्टिव गरीबी होता है वो उससे पनपती है। और बड़े मजेदार चीज है कि दुनिया में जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं कुछ चीजें वहां आपको कॉमन चीजें दिखेगी, उनमें से एक है कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो इंक्लूडिंग यूएसए, वहां काम को बड़ा रेस्पेक्ट मिलता है। वो आपके ऑफिस का डायरेक्टर हो बॉस हो वो भी अगर देखता है कहीं चाय गिरा हुआ है वो किसी दूसरे को बुलाने से खुद ही चाय को साफ करता है, कहीं कोई गंदा है वो खुद झुक करके कर देता है, वो वेट नहीं करता है कि उसका कोई सबोर्डिनेट आएगा और उसको करेगा। हो सकता है हमारे इंडियन लोगों में से कुछ अभी भी यहां आने के कभी कभी होता है ना आदत आसानी से छूटती नहीं है, और कल्चर के नाम पर तो हम ऐसे बावले हो रखे हैं भाई मेरी संस्कृति में नहीं छड़ूंगी के चक्कर सारे गंदी बुरी संस्कृति को अपनी संस्कृति नाम पर यहां बनाए रखते हैं। उसी तरह तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, एशिया में भी काफी डेवलप्ड कंट्रीज हो चुके हैं, जापान है साउथ कोरिया है, आप देखेंगे जो देश जितने समृद्ध होते हैं उनमें एक जो बेसिक अंडरलाइनिंग चीज है कि काम को रिस्पेक्ट होता है, पोस्ट से आदमी की छोटा और बड़ापन से काम नहीं, काम से किसी की छोटा बड़ा होने आंका नहीं जाता। घास काटना छोटी चीज है, झाड़ू लगाना छोटी चीज है, ये माइंडसेट वहां नहीं होता है। और बहुत सारे कारणों में से ये एक है और ये इंटरकनेक्टेड है कि प्रॉस्पेरिटी के साथ, इसलिए मैंने कहा हम उस कल्चर से बिलोंग करते हैं जो वर्ण आश्रम पुरुषार्थ इन सब में कर्म ही देखता है, पर हम खुद ही कर्मों से बड़े दूर भागने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, भारत में बीमारियों की बड़ा क्लासिफिकेशन भी है, अब किसी को डायबिटीज है हार्ट प्रॉब्लम है तो यहां आम लोगों में चाहे कि ये बड़े लोगों की बीमारी है, बड़े लोगों की मतलब जो कामों से नफरत करते हैं, जो बैठे रहते हैं कुछ करते धरते हैं नहीं, पैसा बहुत है गाड़ी में जाते हैं, नौकरों से प्लेट उठाते हैं, अपना पानी का ग्लास भी बीवी से उठाते हैं, नौकर हो तो ठीक है नौकर नहीं तो बीवी से उठाएंगे ना, खुद नहीं उठाएंगे। तो अब होता क्या है, इसलिए भारत में स्त्रियों को कम हार्ट प्रॉब्लम है ऐसा हमने सुना है, क्योंकि एक्टिव रहते हैं, चलो ह्यूमिलिएशन होता है पर फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है। तो और अगर डायरिया है कुछ और लंग्स खराब हो गया बाकी कुछ खराब हो गया, माल न्यूट्रिशन की बाकी चीजों की प्रॉब्लम है, गरीबों की बीमारी है। तो मैंने तो एक दो बताया, वैसे पूरे के पूरे दर्जनों दर्जनों बीमारियों की लिस्ट है, ये धनियों की है पैसे वालों की बड़े लोगों की ये गरीबों की है। फर्क इतना है कि ईश्वर की बड़ी अजीब व्यवस्था है। वो व्यवस्था है कि तुम स्टेटस मेंटेन के लिए कुछ भी करो, तुम्हारे प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध हम चर्चा करेंगे अगले संडे में, तुम्हें बहुत कम काम करने के बावजूद भी बहुत कुछ मिलता हो, पर अगर सुखी रहना चाहता है, हेल्दी रहना चाहता है, लंबा जीना चाहता है, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, काम करो। अगर काम नहीं कर सकते हो तो फिर एक्सरसाइज करो, जिम में जाओ, वॉक करो, पसीना बहाना जरूरी है। अब पसीना बहाना बोल लिया तो किसने बोला, आजकल तो हम एयर कंडीशन में करते, बात पसीना बहाने की नहीं है, आप बॉडी आपकी एग्जॉस्टेड होना चाहिए, आप फिजिकली बॉडी से कुछ काम लीजिए तो बॉडी ठीक रहेगा। मंत्र कहता है 100 साल तक जीने की इच्छा करते हो तो कुर्वन एव ही, काम करते हुए ही लंबा जी सकते हो, कोई रास्ता नहीं है। कोई रिलीजियस बहुत सारे कंसेप्ट चलते हैं, जी हम तो योगी बन गए, भक्त बने, साधु बने, सन्यासी बने, एक बड़ा अजीब किस्म के आजकल हमारे रिलीजियस लीडर्स प्रचार करते हैं, ये संसार सब माया है। अब बड़े मजेदार बात है, आपके किसी भी शास्त्र में संसार को माया नहीं कहा, आपको किसी ने बेकार नहीं कहा, गंदा नहीं कहा, पर हमारे पता नहीं क्यों धर्माचार्य लोग संसार को माया माया कह के, और प्रॉब्लम है कि कहते हैं संसार माया है सब छोड़ो, और सारे धर्माचार्यों के आश्रम 5-स्टार होटल बन रहे हैं, उनकी गाड़ियां महंगी हो रही है, उनके कपड़े महंगे हो रहे हैं, पर प्रवचन लोगों को दे रहे हैं संसार माया है छोड़ो, और खुद पकड़ते जाते हैं। और आम लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता है, इसमें भी कुछ खेल है। चलिए वो अलग बात है, संसार कोई माया नहीं है, ये एक प्री प्लान्ड है, पर्पसफुल है, बनाया गया चीजें हैं संसार में। तो साधु सन्यासी लोगों ने कहा कि हमें क्यों काम करना है, हम तो ईश्वर प्राप्ति के लिए भजन कीर्तन में लगे रहेंगे, तो गोविंद के भजन में जिंदगी बिताएंगे, ये काम करना नहीं है। तो गीता में कृष्ण कहते हैं, देखो तुम अगर कहोगे कि काम छोड़ देना है, क्या क्या छोड़ोगे, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यवशा कर्म सर्व प्रकृति जैरे गुणे ही। सवाल ही नहीं उठता है कि तुम काम छोड़ सकते हो, या जिससे सोसाइटी को फायदा होता है वही काम छोड़ दोगे, बाकी नहाना छोड़ोगे, खाना छोड़ोगे, पीना छोड़ोगे, सोना छोड़ोगे, बैठना छोड़ोगे, चलना छोड़ोगे, बोलना छोड़ोगे, सांस लेना छोड़ोगे, क्या छोड़ोगे। तो फिर तुमने जो कुछ परिवार के लिए, संसार के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा था छोड़ने के नाम पर, उन्हीं को छोड़ देते हो, छोड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारा नेचर में है, तुम्हारी जो बनावट है, जो क्रिएशन है, जिस तरह तुम बने हो, वो तुम्हें मजबूर करेगा करने के लिए, क्योंकि उसमें एक रजोगुण भी है, सत्व रज तमोगुणों से मिक्सचर से तुम्हारा ये ओवरऑल पर्सनालिटी है, ये बॉडी है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, सेंसेस है, उसमें रजोगुण है और उसका काम है, वो आपको मजबूर करेगा करने के लिए। तो आप काम छोड़ के नहीं कर सकते, सोना भी तो एक काम है ना, और आप कहोगे कि नहीं जबरदस्ती मुझे काम छोड़ना है, तो कृष्ण कहते हैं वो हिपोक्रेट है, पाखंडी हो। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसाचरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार सोच्यते। मिथ्याचार, झूठा आचरण, पाखंड जिसको कहते हैं, हिपोक्रेसी, शरीर से कुछ करते हो, मुंह से कुछ बोलते हो, अंदर कुछ और चल रहा है, तुमने कहा कि मैंने खाना छोड़ दिया क्योंकि मैं त्यागी बन गया, पर खाना देखते तुम्हारे मन में विचार आता है कि काश मैं व्रत नहीं रखता तो खा लेता। ये पाखंड है। अगर मन में विचार आया ही नहीं तो जस्टिफेबल है, ठीक है। तुमने कहा मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा क्योंकि ईश्वर प्राप्ति में ब्रह्मचर्य जरूरी है, मैं शादी नहीं करूंगा, अपोजिट जेंडर के व्यक्ति से दूर रहूंगा। फिजिकली तुम दूर हो, सो कॉल्ड ब्रह्मचारी हो, पर तुम्हारे मन में किसी भी अपोजिट जेंडर व्यक्ति को देख के अनेक विकार आता है। विकार आने से तुम गलत नहीं हो, ये तो नेचुरल है। गलत ये है कि तुम उसको छुपाते हो, तो पाखंड को कल्टीवेट करते हो। धीरे धीरे हम बड़े बड़े प्रिस्ट बन जाते हैं और जिस भी सोसाइटी में, कल्चर में सेलिब्रेसी को फोर्स किया जाता है, वो बाय नेचर बाय चॉइस नहीं आता, वो सब करप्ट होता है। आज आप कैथोलिक सिस्टम में देखिए, हजारों सालों से हजार हजार जो पादरीज होते हैं, कैसे सेक्स, आजकल तो क्योंकि मीडिया आ गई तो धीरे धीरे एक्सपोज उनको होने जा रहे हैं, पर ये उनकी दोष नहीं है। आपने जबरदस्ती किसी व्यक्ति को मजबूर किया कि तुम्हें ब्रह्मचारी रहना है, जबकि उसके मन में ऐसी कोई भाव नहीं है। भारत में भी आजकल देखते हैं साधु संन्यासी ये मशरूम की तरह गली गली में उबड़ने लग गए हैं। मन में कोई ना वैराग्य है, ना विरक्ति है, ना ईश्वर प्राप्ति की इच्छा है, बस भगवा पहन लिए क्योंकि इसमें लोगों की बड़ा सम्मान मिलता है, यश मिलता है, धन मिलता है, सब कुछ मिलता है। 90% साधु संन्यासी भारत में आप देखेंगे अंदर से बड़े बहुत विकृतियां लेकर रहते हैं, पाखंड है। उसे होगा क्या? और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम अंदर से भी गए, बाहर से भी गए, ईश्वर तो मिलने से रहा, आत्मज्ञान तो होने से रहा, परम शांति तो मिलने से रही, सांसारिक सुख सुविधाओं के ना मिलने से ग्रंथि कुंठा पैदा करते हैं अंदर। इसीलिए कहा ऐसा मत करना, मन से विचार लाओ अगर किसी को छोड़ना है। शरीर से भी त्यागो, मन से उसके प्रति भाव पैदा करो, वैराग्य। इसीलिए काम छोड़ना, अगर मन में विचार नहीं बना, शरीर से छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। और कितने नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धे द कर्मणः। अर्जुन को समझाते हैं, इसीलिए काम रेगुलरली करो ना। अगर तुम्हारे पास कुछ भी करने को नहीं, उससे बेटर है कुछ करना। कुछ नहीं तो चलो बैकयार्ड में कुछ साफ करो, खाली निठल्ले बैठने से अच्छा है कुछ ना कुछ करना। उस कर्म से कुछ आपको रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है वो डिफरेंट थिंग है, पर करना जरूरी है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समा, ये यजुर्वेद की कमांड है, डिक्लेरेशन है कि अगर लंबा जीना चाहते हो, हेल्दी जीना चाहते हो तो काम तो करना पड़ेगा। सो इट इज गुड थेरेपी। और ऐसा देखा गया है आजकल तो क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रहे हैं, लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रहे हैं, अलग अलग चीजें पैदा होती हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए भी वो पुराने चीजें ज्यादा कारगर होते हैं। देखिए योग हजारों हजारों सालों से वही आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा सब था, पर कोई समझता ही नहीं था। एक तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, आज जिनको पता था वो ऐसे कॉम्प्लेक्स में हमें रख दिया गया था कि हमें अपनी हर चीज बुरी लगती थी। अब समझदारी बढ़ने लगी, लोग एजुकेटेड होने लगे, दुनिया में अलग दुनिया बिल्कुल चेंज हो गया है, लाइफस्टाइल बीमारियां बहुत बढ़ गई है, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम उसको इसके साथ डील नहीं कर सकता। हम मोटे हो रहे हैं, 50 तरह की बीमारियां आ रही हैं, इलाज कर सकता है, रोक नहीं सकता। तो लोगों ने ईस्ट की तरफ देखने लगे, भारत की तरफ देखने लगे। भारत के लोगों ने भारत को नहीं देखा, इन्होंने देखा। अट्रैक्शन बढ़ने लगा, जब इन्होंने करने लगे तो हम लोग भी करने लगे। ये पिछले 60-70 साल से काफी लोग इसको, भारत के साधु संन्यासी आगे आए, पॉपुलर करने लगे। आज देखिए पूरे दुनिया में योगा पॉपुलर है, क्योंकि लोगों की अब जरूरत पड़ने लगी है। लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, काम करने के लिए अवसर नहीं है। ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, ऑफिस में भी चेयर में बैठना होता है। 8-10 घंटे काम करने के बाद, 12 घंटे काम करने के बाद फिर इतना एग्जॉस्टेड होते हैं और कुछ करने को बचता नहीं। फिर फैमिली है, बच्चे हैं, रिलैक्स करना है तो आसन करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन कंसंट्रेशन करो। एक थेरेपी आई, ये कर्म थेरेपी। कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत स्ट्रेस में हो, घर में बहुत लड़ाई हुई है, ऑफिस में प्रॉब्लम हुआ है, कुछ करो। कुछ नहीं तो बैकयार्ड में कुछ करो, कुछ गैराज में कुछ काम करो। कितने काम में बिजी रहने से स्ट्रेस लेवल अपने आप बहुत डाउन हो जाता है, अगर आपको योगा करने का भी कुछ ज्ञान नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। करोड़ों लोग हैं जिनको योग के बारे में जानना, आप बहुत भाग्यवान लोग हैं। भारत में जहां ये योग पैदा हुआ है, वहां भी करोड़ों करोड़ों लोगों को योग से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। करना तो दूर की बात है, अगर नहीं है पर वो भी तो रिलैक्स के लिए कुछ ढूंढते। तो कर्म काम करना भी हमें बहुत सारे तरीके से हमारे स्ट्रेस को, बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम को ठीक करता है। ईश्वर के दिए हुए टैलेंट को हम ज्यादा नॉरिश कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं। टैलेंट नहीं भी है, मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। एक एवरेज से बड़े मजेदार, पता है जनरली हम बड़े मेस्मराइज्ड होते हैं जब कोई छोटे बच्चे को टैलेंटेड देखते हैं, अपने एज से बहुत ज्यादा टैलेंट उसके अंदर हो। पर देखा गया है जो जरूरत से ज्यादा टैलेंटेड बचपन में दिखते हैं, कोई गाने में, संगीत में, डांस में, मैथ में, साइंस में, लिटरेचर में, किसी भी चीज में, इनमें बहुत कम होते हैं, मुश्किल से 10% भी होते होंगे आगे जा करके जो बहुत कुछ अचीव करते हैं या सक्सेसफुल होते हैं। और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं संसार में किसी भी फील्ड में, वो सब एवरेज आईक्यू वाले, मतलब उन्होंने, ईश्वर ने शुरू में उनको बहुत ज्यादा टैलेंट नहीं दिया, एवरेज टैलेंट वाले। तो कैसे बने? अपने मेहनत से, अपने कंटिन्यूअस अनब्रोकन एफर्ट से। आप अपने परिश्रम से जो टैलेंट ईश्वर ने 10% दिया, आप उसको 100% में कन्वर्ट कर सकते हो। मेहनत नहीं करेंगे तो 100% का टैलेंट 10% में सिमट जाएगा। ये बहुत जरूरी है, खास करके हमारी कम्युनिटी में। यहां की कम्युनिटी, अमेरिकन मेन स्ट्रीम में यह प्रॉब्लम नहीं है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं काम करना। अभी भी इवन हम यहां अमेरिका में 30 साल, 40 साल, 50 साल से हैं, बहुत सारे लोगों के घर में बच्चे वो इंडियन माइंडसेट के साथ हैं। ये बर्तन मांजना मेरा काम नहीं है, खाना बनाना नहीं है, साफ करना नहीं है। बचपन से, खास करके हमारे कम्युनिटी में, ये सिखाने की जरूरत है। लड़का हो या लड़की, काम कराने की जरूरत है, उसकी वो माइंडसेट चेंज होने की जरूरत है। हर काम ऑनरेबल है, हर काम में रेस्पेक्ट है, हर काम मेरे लाइफ और मेरे आसपास रहने वाले लोगों के लाइफ में चेंज आने के लिए होता है। वो झाड़ू लगाना हो या मेडिसिन में रिसर्च करना हो, सबका अपना एक वैल्यू है, सबको रेस्पेक्ट करो। ये जब तक हम बचपन से नहीं सीखेंगे तो बड़े होने पर बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे इंडियन लोग हैं 60-70 साल के हो गए हैं यहाँ 25-30 साल से, अभी भी उनको बहुत मुश्किल होता है पत्नी को हेल्प करने में किचन में। ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, वो सिर्फ इसीलिए कि वो जो ट्रेनिंग है, वो जो अपब्रिंगिंग है, वो उस अपब्रिंगिंग को तोड़ नहीं पा रहे हैं, वो मजबूर हैं। पर ये हमारे बच्चों में ये संस्कार ना आए, हर वो टॉयलेट साफ करने से लेकर महात्मा गांधी के आश्रम में ये व्यवस्था होती थी, और वो खुद अब उन दिनों या आजकल के इतने सुंदर टॉयलेट और इतने वो डिजिटल टाइप का तो नहीं होता है कि आपने फ्लश किया सब हो गया, खुद करना पड़ता था सबको। गेहूं पीस, जिसको भी खाना है गेहूं पीसो, आटा बनेगा तभी रोटी मिलेगी, नहीं तो भूखा रहोगे। क्योंकि वो इंडिया में वो जरूरी था, भारत में वो लोगों के अंदर वो जागृति लाने के लिए कि छोटे से छोटे काम को रेस्पेक्ट करो। देवियों सज्जनों, ये बहुत जरूरी है कि हम काम को रेस्पेक्ट करें। एक छोटी सी और पुरानी एक आख्याई का नरेशन कह के आज की इस प्रसंग को यहां विराम देंगे। ऐतरीय ब्राह्मण एक पुराना, बहुत पुराना ग्रंथ है, वेदों के बाद जो सेकेंड लेवल के जो ग्रंथ आए वो ब्राह्मण ग्रंथ आए। हर वेद के अलग अलग ब्राह्मण है, ऐतरेय, तैतरीय, गोपथ, शतपथ, बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ है। उनमें एक ऐतरेय ब्राह्मण है, उसमें एक आख्यायिका, एक छोटी सी स्टोरी आती है। छोटी स्टोरी या आख्यायिका जो होती है वो कोई बात को समझाने के लिए एक स्टोरी बताई जाती है, वो रियल है अनरियल है वो मैटर नहीं करता, उसकी स्टोरी का मैसेज मैटर करता है। स्टोरी ये थी कि हरिश्चंद्र नाम का कोई राजा थे, उनका बेटा रोहित, वो हरिश्चंद्र नहीं जो आप महाभारत में रामायण में सत्यवादी हरिश्चंद्र की, वो एक दूसरी स्टोरी है, राजा थे, उनका नाम रोहिताश्व नामक एक पुत्र था, और पुत्र बहुत मुश्किल से पैदा हुआ, उनके बच्चे नहीं होते थे, उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत कुछ किया तो नहीं हुआ। काफी सालों के बाद, कितने सारे डिकेड्स के बाद, वरुण देवता से उनका मिलना हुआ, तो वरुण देवता ने कहा एक कंडीशन में मैं आपका, क्योंकि कोई बच्चा नहीं हो रहा है तो वो जो निष्पुत्री का होना, मतलब बिना बच्चे के रहना, इस दोष से मुक्ति के लिए तो मैं आपको एक संतान की आशीर्वाद दे सकता हूं, पर शर्त है कि वो संतान पैदा होने के बाद आप वो मुझे दे दोगे, वो मेरा होगा। हरिश्चंद्र तब अपने वो अपुत्रिक दोष, अपुत्री का समझते हैं कि संतानहीनता, कि कोई बच्चा नहीं है, तो इस दोष से या सामाजिक वो से दूर रहने के लिए वो मान गए। बेटा पैदा हुआ रोहिताश्व, जैसे ही पैदा हुआ वरुण ऋषि देवता आए, बोले लाओ तुम्हारे बच्चे को दे दो। उन्होंने देखो अभी इतना छोटा है, मां का दूध पीता है, थोड़ा शर्म तो करो, बच्चे को थोड़ा बड़े हो जाने दो। ठीक है, मां के दूध पीना जब खत्म हो गया, अपने हाथ से खाना लगा, तो वरुण आ गए, बोले लाओ छोटा बच्चा है अभी थोड़ा पढ़ने लिखने, तो हम इसको एजुकेटेड कर देंगे तब देंगे, उपनयन संस्कार के बाद आना। ठीक है, उपनयन संस्कार के बाद आए तो बोले लाओ अभी वो गुरुकुल में जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, तो उसके बाद ले लेना। वरुण बोला ठीक है। गुरुकुल से वापस आया तो वही एक्सक्यूज दिया, तो वरुण को गुस्सा आया, बोले देखो मैं एक हफ्ते के बाद आऊंगा, तुम्हारे बेटे को ले जाऊंगा, जो कंडीशन था। वरुण चले गए। हरिश्चंद्र ने रोहिताश्व से कहा बेटे स्थिति तो बड़े गंभीर है, हम तुम्हें वरुण को नहीं देना चाहते हैं, तुम ऐसा करो भाग जाओ, कहीं छुप जाओ, जंगल में भाग जाओ, जब सब शांत हो जाएगा, एक दो साल जितने साल लगेगा कोई बात नहीं, तब हम तुम्हें ढूंढ ढांढ के ले आएंगे, बस अभी तुम भाग जाओ। रोहिताश्व दौड़ा, दौड़े दौड़े किसी जंगल में जाकर छुपा। वरुण को पता चला रोहित छुप गया है और ढूंढ ढांढ के उसको निकाला। रोहित को बोला ये क्या कर रहे हो भाई, पुरुष हो, इंसान हो, पुरुष का मतलब आदमी नहीं, इंसान हो, मेहनत करो, अगर मुझसे बचना ही था तो कोई रास्ता ढूंढता, ये क्या भागने का रास्ता चुना। उस प्रसंग में वो 10-12 बड़े सुंदर मंत्र बोलते हैं, मैं सारा नहीं बोलूंगा, एक मंत्र बोलूंगा, बहुत सुंदर मंत्र है और पूरे इंडियन कल्चर का बहुत बहुत सुंदर भाग है। उनमें से एक मंत्र बड़ा है, वो कहते हैं आस्ते भगासिनस्योर्ध्वस्तिष्ठति तिष्ठता शेते निपद्यमानस्य चरैति चरतो भग चरैवेति चरैवेति। वो जो 15-20 मंत्र है उसके लास्ट में आता है चरैवेति चरैवेति। इसका मतलब होता है कीप मूविंग कीप गोइंग, करते रहो कुछ ना कुछ करते रहो। विपत्ति आई प्रॉब्लम्स आए रोने मत बैठ जाओ, खाली मत बैठ जाओ, कुछ करो। मरना भी है तो कुछ, अगर पता लग गया है कि अब मरना ही है तो कम से कम कुछ करके मर जाओ, खाली खाली मत जाना। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजि विशेष सतम समा। क्या कहता है कि जो आदमी बैठा रहता है ना उसका भाग्य भी बैठा रहता है, जो लेटा रहता है उसका भाग्य भी लेटा रहता है, जो खड़ा रहता है उसका भाग्य खड़ा रहता है, जो चलता है उसका भाग्य चलता है, और जो दौड़ता है उसका भाग्य भी दौड़ता है। जो जितना एक्टिव होगा उसका सो कॉल्ड भाग्य लक भी उतने ही दौड़ेगा। भाग्य को ईश्वर नहीं लिखता, वो हमारे कर्मों के हिसाब से ईश्वर देता है। हम जितने ज्यादा मेहनत करेंगे उतने भाग्य आएगा। और लास्ट में कहता है, और एक चरण वही मधु विंदती चरण स्वादु मुदुम्बरम पश्य सूर्यस्य श्रेमाणम यो न तंद्रयते चरण चरैवेति चरैवेति। बोले देखो, अगर करते रहोगे कुछ ना कुछ मीठा जरूर मिलेगा। अगर भरोसा नहीं तो सूरज को देखो, थकता नहीं है। थकता इसीलिए नहीं है कि उसको रात को सोता है, इसीलिए कि वो करता रहता है करता रहता है। सूर्य के काम को देखो, चंद्र के काम को देखो, कभी ना थकते हैं ना कभी विश्राम करते हैं। तो जो लोग कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जीवन में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अब पता है उनको क्या कहा जाता है? आर्य कहा जाता है। आर्य शब्द का सिंपल ट्रांसलेशन है प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस करता है आगे बढ़ता है, दैट्स इट। इसीलिए श्रेष्ठ होता है। देवियो सज्जनों, ये मंत्र का पहला भाग था कि कर्म हमारे लाइफ से क्या उसका रिलेशनशिप है। अगले बार हम चर्चा करेंगे कर्म और उसके रिजल्ट्स। हम बहुत तरह के कर्म करते हैं जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिलता तो क्यों मिलता? फिर नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे, जिसको आप लॉ ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट में हम चर्चा करेंगे कर्म योग की, जो मुक्ति पाने के लिए वो कर्म करते हुए भी कैसे मुक्ति पा सकते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।